रोमियो 8 बाब की 28वीं आयत, यूं लिखा है कि 28वीं आयत, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। सो अजीजो, ये शुक्रगुजारी के लिए एक मरकजी ख्याल है जो मैंने अक्सर अपनी गवाही में भी इस्तेमाल किया है। तो इसके साथ ही हम दूसरा खत ग्रंथियों का उसका 4 बाब और उसकी 13वीं से 15वीं आयत तक जो बयान है उसमें यूं लिखा है कि खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए। तो ये शुक्रगुजारी का लफ्ज जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके मानी किसी इंसान की तारीफ या उस खानदान की तारीफ। कभी कभी लोग ये कहते हैं कि जी हमने शुक्रगुजारी की इबादत रखी हुई है तो हम इसमें आप सबको दावा देते हैं। तो अगर तो वाकया ही गवाही के तौर पर है, खुदा के जलाल के लिए है, तो मैं समझता हूँ कि इससे खुदा की ताजीम, खुदा की तंजीम, खुदा की तारीफ और खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए, ना कि किसी खानदान का, ना किसी इंसान का, बल्कि सारा जलाल खुदा को ही मिलना चाहिए। तो शुक्रगुजारी की तारीफ भी यही है कि हम ये कह सकते हैं हमारी तमाम मसीही इबादतों में शुक्रगुजारी का लफ्ज़ जो है ये इबादतों में मरकजी हसीयत रखता है। और अक्सर हम शुक्रगुजारी के गीत और ज़बूर गाकर इसका इजहार भी करते हैं। पुराने अहदनामे में भी बहुत सी मिसालें हमें मिलती हैं और ख़ास तौर से एक ख़ास हवाला है जो मुश्किल दौर में दुआ के साथ शुक्रगुजारी की जाती है और वो है दानियल नबी की मिसाल, जिसकी मिसाल लेते हुए हम ये कह सकते हैं कि दानियल के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त था, क्योंकि जब नबूकदनेस्सर बादशाह ने और दारा बादशाह ने इन असीरों को जो बनी इसराइल के असीरी थे सीर करके ले गया था, उनको अपने मुल्क में ले गया, तो उसके जो दुश्मन थे उन्होंने एक साजिश तैयार कर दी। और लिखा है कि वो साजिश ये थी कि जो कोई बादशाह की मूरत को ना झुके, सीधा ना करे, वो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। तो ये कोई आसान वक्त नहीं था, लेकिन ये वो वक्त था जब दानियल खुदा के सामने जाता है और हसबे दस्तूर वो अपनी खिड़की का दरवाज़ा यरूशलेम की तरफ खोलता है, जो आम बनी इसराइल के लिए हुक्म था कि वो यरूशलेम की तरफ रोक करके जो दुआ करेंगे खुदावंद उसको कबूल करेगा, सुनेगा। तो वो शुक्रगुजारी के तौर पर खुदा के सामने ये लेके जाता है और जब उसने खुदा की हजूरी में दुआ की, खुदा के सामने खुदा को जलाल दिया, तो उसके खिलाफ जो मनसूबा बांधने वाले थे, जो उसके दुश्मन थे, वो सोचते थे कि ये खुदा की बजाय आज देखेंगे कि बादशाह को, दारा बादशाह को सजदा करता है या नहीं, उसकी मूरत को आगे झुकता है या नहीं। तो ये दानियल के खिलाफ एक ऐसा मनसूबा था जिसमें उसको फंसाया जाने वाला था। लेकिन याद रखें, ये ऐसी मिसाल है हमारे लिए जो उसने मुश्किल की परवाह नहीं की, मुश्किल वक्त में भी, मुश्किल दौर में भी। वैसा ही वक्त आजकल जब हम अपने मसीह भाइयों को पूरी दुनिया में देखते हैं, यहाँ पर बहुत से ममालिक का जिक्र हम सुनते हैं कि जो सताए जाते हैं, जो दुख में डाले जाते हैं, उनको इजाज़त नहीं कि वो अपने गिरजाघरों में आज़ादी से इबादत कर सकें। तो ये नहायत ही मुश्किल वक्त है, लेकिन ये दानियल की मिसाल हमें हौसला देती है, ये सिखाती है कि हम उसी वक्त जिस तरह दानियल ने इस मुश्किल वक्त में अपना खिड़की का दरवाज़ा यरूशलेम की तरफ खोला, खुदा की हजूरी में झुका और लिखा हसबे दस्तूर वो दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। अगरचे उसको याद था कि ये हुक्म ऐसा सख्त लिखा है जिस पर बादशाह की अंगूठी की मोर लगी हुई है कि अगर कोई दारा बादशाह की मूरत के बगैर कोई अपने माबूद को पुकारेगा तो उसको शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। मेरे अजीजों, आप देखते हैं अगर आप उसको उस वाक्यात को पढ़ें पूरे तौर पर जो दानियल की किताब के छठे बाब की 9वीं और 10वीं आयत में है, तो लिखा है उसके बाद क्या हुआ, उन जालमों ने, उन दुश्मनों ने बादशाह के सामने जाकर शिकायत कर दी, क्या ये बादशाह, क्या तूने ये हुक्म जारी नहीं किया, और देख इस वक्त भी दानियल तेरी परवाह नहीं कर रहा, वो अपने माबूद को पुकार रहा है, उसने अपना खिड़की का दरवाजा तेरी मूरत की तरफ नहीं बल्कि यरूशलेम की तरफ खोला हुआ है और वो उसी को पुकार रहा है और वो खुदा का शुक्र कर रहा है। मेरे भाई, हम याद रखते हैं कि इस वक्त जो शुक्रगुजारी की बात हम करते हैं, ख्वा वो किसी रेडियो स्टेशन की हो या इस वक्त जो हमारे प्रोफेसर राज साहब ये प्रोग्राम बना रहे हैं ये पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो ये कोई किसी शख्स की तारीफ नहीं है, ये खुदा का जलाल है, ये खुदा की बुजुर्गी है, ये हम सारी जो टीम है जो कलाम सुनाने वाले हैं या मशीनरी का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो यहाँ पर भी रेडियो आवाज FM के जरिए हम मकामी सतह पर खुदा के पैगाम को पहुंचाते हैं, तो ये शुक्रगुजारी ऐसे वक्त में करना ये भी कोई आसान काम नहीं है बल्कि ये खुदा के जलाल के लिए है। इसलिए हम याद रखें कि ये मिनिस्ट्री जो है ये खुदा के जलाल के लिए है। मेरा पूरा ईमान है कि खुदा हर मुश्किल में, हर दौर में अपने बंदों की मदद करता है, हिफाजत करता है, उनको बचाता है, उनको संभालता है, और खुदा की खिदमत इसी तरह से जो खुदा के लिए वक्फ लोग हैं वो जारी सारी रखते हैं, खब मुश्किलात कितनी भी बढ़ जाएं, वो इन मुश्किलात से नहीं बढ़ते, नहीं डरते, नहीं घबराते, बल्कि वो अपनी उम्मीद की चट्टान को, ईमान के जहाज को गर्क नहीं होने देते और वो हमेशा इसी तरह से ताजगी से खुदावंद के मुकद्दस कलाम को सुनाते रहते हैं। नए अहदनामे में एक मिसाल भी हम देखते हैं मुकद्दस पौलुस रसूल की, जब वो मसीहों को सताता था, वो एक दरिंदा था, एक भेड़िया था, लेकिन जब मसीह के चरणों में आ गया, मसीह उस पर यरियो के रास्ता में जाहिर हुआ, तो लिखा है कि वो भेड़ बन गया, मेमना बन गया, मसीह के लिए और दुख उठाने के लिए तैयार हो गया, और वो मसीही ईमान में इस हद तक दुख उठाने लगा कि लिखा है कि वो बार बार उसको मुसीबतों में डाला गया, उसको कोड़े लगाए गए, उसको पीटा गया, तो भी लिखा है कि वो शुक्रगुजारी करने से बाज नहीं आया। वो एक हमारे लिए एक नमूना था। इस वास्ते वो दूसरे खत ग्रंथियों के 4:15 में लिखता है कि खुदा बहुत से लोगों के सबब से ये फजल ज्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए। वो जब खुदा की तारीफ करता है, खुदा का पैगाम देता है, तो वो ये नहीं कहता कि ये किसी एक बात का, एक शख्स का काम है, बल्कि वो इस आयत में खुसूसन ये बयान करता है कि बहुत से लोगों के वास्ते खुदा की शुक्रगुजारी बढ़ रही है। तो जितने लोग खुदा की खिदमत करते हैं, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल और बुजुर्गी देने के लिए करते हैं, वो खुदा के साथ काम करने वाले हैं। इसीलिए वो यहाँ पर इस आयत में बड़ी वजाहत करता है, दूसरा खत ग्रंथियों का उसका 4 और उसकी 15वीं आयत में यूं बयान किया गया है, जरा इस आयत को सुनिए, यहाँ लिखा गया है, इसलिए कि सब चीजें तुम्हारे वास्ते हैं ताकि बहुत से लोगों के सबब से फजल ज्यादा होकर खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी भी बढ़ाए। तो ये जो खुदा का फजल है जो हमें बर्दाश्त करने की हिम्मत देता है, ताकत देता है, ये खुदा ही का इंतजाम है, खुदा ही का फजल है, इसलिए ये बहुत से लोगों के लिए شکر گزاری کے طور پر خدا کے جلال کا سبب بنتا ہے. اس لیے اس پر خدا کے جلال کی بڑھائی، خدا کے جلال کی شکر گزاری، خدا کے جلال کی تعریف ہونی بہت ضروری ہے. اس لیے کبھی بھی اگر ہم کوئی بڑا کام کرتے ہیں خدا کے لیے تو اس میں اپنی بڑھائی، اپنی تعریف، اپنی عزت نہیں کریں، نہیں مانگیں، بلکہ خدا کے نام کو عزت و جلال و بزرگی دیں. ہو سکتا ہے ہم کہیں خدا کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں اور کوئی دیکھنے والا ہماری تعریف نہ کرے، یا جو ہمارے اوپر انچارج ہیں وہ ہماری تعریف نہ کریں، فکر نہ کریں، بلکہ آپ خدا کے جلال کے لیے کر رہے ہیں تو خدا سے اس کا اجر آپ کو ملے گا. خدا کی طرف سے اپنا ہاتھ بڑھائیں، خدا کی طرف کا خدا کا ہاتھ بڑھا ہوا دیکھیں، اور بہت سے لوگوں کے سبب سے غور کریں کہ یہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے، بہت سے لوگوں کے سبب سے خدا کا فضل زیادہ ہو کر خدا کے جلال کے لیے شکر گزاری بھی بڑھائے. تو یہ شکر گزاری جو ہے، جو ہم مشکلات میں پڑھ کر کرتے ہیں، یہ اس سے خدا کے نام کو اور زیادہ جلال ملتا ہے، عزت ملتی ہے، شکر گزاری ملتی ہے. اور خدا کی شکر گزاری کرنا ہماری ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے اور اسی نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس کے لیے کوئی کام کر سکیں، ہم اس کی خدمت کر سکیں اور اس کے سامنے جا سکیں اور اس کے لوگوں کو اس کا پیغام سنا سکیں. جب ہم یرمیا نبی کی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ بچپن ہی میں وہ کہتا ہے میں تو بچہ ہوں، میں تو اس لائق نہیں، تو خدا اس کو ہمت دیتا ہے، طاقت دیتا ہے. اور پھر جب وہ یہ تلاوت میں اگر آپ پڑھیں تو یرمیا کی کتاب میں آگے جا کے فشہور جو اس وقت کا سردار کاہن تھا، اس نے اس کو لکھا ہے کہ کاٹھ میں اس کو ٹھونک دیا، اس کو دکھ دیا، تو بھی وہ خدا کے جلال کے لیے خدا کی تعریف کرنے سے باز نہ آیا. اور اس نے اس کو الاعلان کہا کہ تو اب سے خدا کی طرف سے لانتی ہوگا، تو بھی اسیر ہو کر جائے گا. تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، ایسے اختیار والے شخص کے سامنے جا کر گواہی دینا. یہ خدا کی شکر گزاری کا ایک اظہار ہے کہ خدا ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے. سو عزیزو، اگر اس قسم کی کوئی مشکل، اس قسم کا کوئی وقت، اس قسم کی کوئی مشکل یا تکلیف کی گھڑی ہم پر آئے، تو ہم خدا کا بھروسہ رکھیں، خدا پر بھروسہ رکھیں. اس کا فضل ہمارے لیے جاری اور ساری ہے. اس لیے یہاں بھی آپ شکر گزاری کی عبادت میں شریک ہوں، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، بلکہ خدا کے جلال کے لیے سب کچھ اس کی قدرت، اس کی عظمت اور اس کی حشمت کے لیے کریں، تاکہ سارا جلال اور بزرگی اسی کے نام کو ملے. کیونکہ جب ہم فلپیوں کے خط کے چوتھے باب اور اس کی چھٹی آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے فلپیوں، پالوس رسول کا خط، فلپیا کی کلیسیا کے نام، اس کا چوتھا باب چھٹی آیت لکھا ہے، تمہاری نرم مزاجی سب آدمیوں پر ظاہر ہو، خداوند قریب ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات کی میں ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں. سو ہر بات میں منت بھی، دعا بھی، جو کچھ بھی ہو، شکر گزاری کے طور پر خداوند کے حضور پیش کی جائیں، تاکہ خدا کے نام کو عزت اور جلال اور بزرگی ملے. تب ہی ہم خداوند کی خدمت کرنے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اگر ہم اپنی بڑھائی چاہتے ہیں، اپنی عزت چاہتے ہیں، تو ہم سمجھ لیں کہ ہم نے جو کام بھی اب تک کیا ہے وہ سارا ادھورا گیا ہے، وہ بیکار گیا ہے. کیونکہ اس میں لکھا ہے کہ اگر ہم نے اپنی عزت چالی کروا لی تو ہم نے اپنا اجر زمین پر پا لیا. خدا یسوع مسیح نے پاڑی باز میں خصوصاً یہ کہا کہ آدمیوں کے لیے اگر کچھ کرتے ہو تو سمجھو تم نے اپنا اجر پا لیا. جو ہے متی کی انجیل کے چھٹے باب میں خصوصاً یہ پہاڑی باز کا خاص بیان ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کچھ تم ریاکاروں کی طرح کرتے ہو، خبردار، اپنے راست بازی کے کام आदमियों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप के पास जो आसमान पर है तुम्हारे लिए कुछ अजर नहीं। मेरे अजीजों, अगर हम अजर चाहते हैं, खुदावंद के साथ से बरकत चाहते हैं, तो हम अपना सारा भरोसा और उस पर रखें और हमारी दुआएं, मुनाजातें, शुक्रगुजारियां सब कुछ खुदा के जलाल के लिए होनी चाहिए और उसी के नाम को सारी तारीफ, स्तुतिश और बुजुर्गी मिलनी चाहिए। खुदावंद हम सब को बरकत दे और तौफीक बख्शे कि हर बात में उसको मुकद्दम दर्जा दिया जाए और उसकी शुक्रगुजारी की जाए। आमीन।